بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بجي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ایک دفعہ درود بجے محمد و آل محمد اذان محترم خانواده آل حسن کی جانب سے عشرے کی یہ مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا موضوع ہے شناخت عاشورہ. جتنا جتنا انسان عاشور کو اور حسین ابن علی کی کربلا کو سمجھتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ انسان بنتا چلا جائے گا. اس لیے کہ حسین ابن علی کی کربلا کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی متاع گمشدہ کو پائے. وہ انسان جو تاریخ کے پیچ و خم میں اپنی انسانیت کو بھلا بیٹھا ہے, وہ انسان جو عصر و ظہور کے نشے و فراز میں انسانیت کے گوہر نایاب کو کھو چکا ہے, وہ انسان جو شب و روز کی چکی میں مسلسل اپنی انسانیت کے گوہر کو پرانا کرتا چلا جا رہا ہے, کربلا کا مقصد یہ ہے کہ اسے انسان بنایا جائے اور اسے مدارج انسانیت کی طرف شوق دلایا جائے. اور یہ انسانیت کہ جس کا خمیر ہر انسان میں موجود ہے, کہ جسے سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ کر مخاطب کیا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, انسانوں کی فطرت اللہ کی فطرت پر قائم کی گئی ہے. اور یہیں سے انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت کو اللہ نے اپنی فطرت پر قائم کیا ہے. جانوروں کی, نباتات کی, جمادات کی, اسٹونز ہیں, پہاڑ ہیں, جانور ہیں, مویشی ہیں, دریائی جانور ہیں, خشکی کے جانور ہیں, کسی کے لیے خدا نہیں نے کہا, صرف انسان کے لیے کہا کہ انسان اپنی حقیقت کو پائے. توجہ رکھیے گا عزیزین گرامی, انسان انسان بنتا چلا جائے. اور اسی لیے شناخت عاشورہ ضروری ہے کہ اس دور میں جتنا ہم ماڈرنزم کی طرف بڑھ رہے ہیں, غرب زدہ ہو گئے ہیں, میڈیا زدہ ہو گئے ہیں, فیشن زدہ ہو گئے ہیں, حیوان زدہ ہو گئے ہیں, معذرت کے ساتھ ہمارا ماجرا حیوان زدہ ہو گیا ہے. وہ کام جو حیوانوں کے کرنے کے ہیں وہ اب انسان کر رہا ہے. اتفاق سے بعض اوقات سوشل میڈیا پر کچھ اچھے کلپس آتے ہیں, ان کو میں کہتا ہوں دیکھا کریں. کوئی انگریز عورت جا رہی ہے, کسی باہر ملک کا واقعہ ہے, ایک شخص آتا ہے اس پہ حملہ کرتا ہے, اس کے مال و متا کو اس پہ جھپٹتا ہے, چھینتا ہے. انسان حیوان بن گیا اور اسی کے پیچھے ایک سگ آ رہا ہے جو اس انسان پہ حملہ کر کے اپنے مالک کو بچاتا ہے. حیوان کیا کر رہا ہے, انسان کیا؟ اس لیے کہ ہم حیوان زدہ لوگ ہوتے جا رہے ہیں, ہمارا معاشرہ حیوانیت کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی وہ خبریں آتی ہیں کہ الامان و الحفیظ, واقعا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں. جہاں مرد مرد سے تعلقات اور شادی کی باتیں کر رہا ہو, جہاں پر والدین کو فکر ہی نہ کہ اولاد کس سمت جا رہی ہے. اس لیے کہتا ہوں اپنے گھروں کو, اپنی فیملیز کو وقت دیجئے. آپ وقت نہیں دیں گے تو میڈیا, فیس بک, واٹس ایپ, انٹرنیٹ, یہ سب کیا آپ کے فیملی کے اذہان کو اغوا کر لیں گے. بچہ آپ کا اغوا ہوگا لیکن اس کا جسم آپ کے پاس ہوگا, اس کی روح اغوا ہو چکی ہوگی. इसलिए कि हम मगरिब ज़दा हो गए हैं, मीडिया ज़दा हो गए हैं, हैवान ज़दा हो गए हैं। एक अजीब रिवायत मैंने सुनी और बड़ा अजीब ताज्जुब हुआ मुझे, वाकयान अजीब ताज्जुब इसलिए हुआ कि ताज्जुब भी वो भी अजीब ताज्जुब कि इंसान कहाँ जा रहा है। रसूल गिरामी क़द्र हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असाब के साथ गुजर रहे थे कि एक सगे वहशी आया जिसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। असाब खौफजदा हो गए, पीछे हट गए, रसूल के करीब आ गया। रसूल ने कहा ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ये मुझसे मिलने आया है। कुछ देर खड़ा रहा, उसके बाद चला गया। असाब ने कहा रसूल ये आपसे मिलने आया था? हाँ, ये मुझसे कुछ अर्ज़ करने आया था। कहा क्या कहने आया था? कहा ये सगे वहशी जिसे देख के तुम डर गए, खौफ के शिकार हो गए कि कहीं हमला ना कर दे, ये कह रहा था या रसूल अल्लाह मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे सग और कुत्ते की सूरत में पैदा किया, मुझे बेनमादी इंसान नहीं बनाया। तवज्जो कर सकते हैं आप, इन इंसान को अल्लाह ने अपनी फितरत पे बनाया। फितरत क्या है? यानी जो चीज़ खुदा को पसंद है वो आपको पसंद है। तवज्जो रखिएगा, यानी कितना बड़ा जुमला इस पर जाके गौर। फितरत किसे कहते हैं? फितरत किसे कहते हैं? जो अल्लाह को पसंद है अल्लाह ने वो आपको पसंद करवाया है। जो अल्लाह को अच्छा लगता है खुदा ने आपको ऐसा बनाया कि वो आपको अच्छा लगे। एक नौजवान एक क्रिकेटर की शबी इख्तियार करता है, उसके कपड़े पहनता है, उसकी टी शर्ट पहनता है, समझता है मैं फलां क्रिकेटर हो गया जी। कोई फुटबॉलर है उसकी टी शर्ट उसके नाम की टी शर्ट पहन लेता है, अकड़ के चलता है। कोई फिल्म स्टार है उसके जैसा हेयर स्टाइल अपना लेता, समझता कि मैं फलां से मिल रहा हूँ जी मेरा चेहरा। और आजकल तो फेसबुक पे ये बहुत ज़्यादा है, अपनी तस्वीर डालिए किसी किसी एक्टर के साथ आपको मिला देंगे, वो बेचारा जो है वो फॉरवर्ड कर करके जनाब मुझे लाइक करो, मुझे कमेंट्स करो, मुझे जो है वो पसंद करो, उस पर जो है तासरात दो, कमेंट्स दो अपने। वो समझता कि मैं फ़लाँ से मिल जाऊँगा, फ़लाँ से शबी आ जाएगी, फ़लाँ से मैच हो जाऊँगा, फ़लाँ के कपड़े पहन लूँगा, फ़लाँ का हेयर स्टाइल इस्तेमाल कर लूँगा तो क्या होगा। खुदा कह रहा है ये बहुत ही निचली सतह की चीज़ें हैं। खुदा ने तुमको ऐसा बनाया है कि जो खुदा को पसंद है वो तुम्हें पसंद है, और जो खुदा जिससे नाराज है खुदा ने तुम्हें ऐसा बनाया कि तुम्हें भी वो बुरा लगे। ये है फितरत, ये है इंसानियत। फितरत अल्लाह ही लतफतरना साल है, अल्लाह की फितरत पर इंसान को। ये बहुत बड़ा जुमला है। यानी यूं कहूं कि अगर मुझे वो चीज़ पसंद है जो इमाम हुसैन को पसंद है, कितना बड़ा जुमला है ये। मैं अक्सर जब कहीं सफ़र पर जाता हूँ मजलिस से ले आना जाना, तो मेरी आदत है एक नफ्सियात के तालिबे इल्म हैसियत से मैं रबता बरकरार करता हूँ, गाड़ी में कौन बैठा है, क्या करते हो, बकौले मारूफ जिसको हमारी उर्दू जबान कहाँ खुले बंदे हो मियाँ तो हेलो हाय करता हूँ, गुफ्तगू करता हुआ जाता हूँ, तो नाम ज़रूर पूछता हूँ मियाँ नाम क्या है। तो हम जब ये दो तीन दिन आ रहे हैं तो हमारे साथ एक बच्चा भी आता है जिसका नाम है वाजिद अली, शायद आज नहीं आया मेरे ख्याल से। तो मैंने कहा वाजिद का मतलब पता है तुम्हें? कहेंगे जो सब को पाले। मैंने कहा हाँ, नाम का मतलब पता है लेकिन अगर इसको तुम मुँह पढ़ो वाजिद अली, वाजिद अली क्या मतलब है? अली को पाने वाला, कितना खूबसूरत नाम हो जाएगा। कहते हैं क्या नाम है बेटा? फ़खर अब्बास, कमर अब्बास। मैंने पहले भी शायद अर्ज़ किया था ये उर्दू हमारी शॉर्टकट होती चली जा रही, जैसे इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू, एच आर यू लिख देते हैं जी, उर्दू में भी अब यही किस्म की टर्मिनोलॉजी आती आनी शुरू हो जाएंगी। अभी नहीं, कुछ अर्से के बाद रोमन इंग्लिश तो आई गई है, बच्चे उर्दू पढ़ने नहीं आती, रोमन इंग्लिश में पढ़ते हैं हैं। तो यानी कराची में माँ बाप मसलन उर्दू दाँ हैं, उर्दू पढ़े लिखे हैं, बच्चों को उर्दू पढ़नी नहीं आती, तो वो नौबत भी आने वाली है उर्दू पर, ये सितम भी ढाया जाएगा। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम कमर अब्बास नहीं है? नहीं नहीं मौलाना, ना मेरा नाम कमर अब्बास है। मैंने कहा देखो तुम्हारा असल नाम कमर अब्बास था, तुम्हारा असल नाम फ़खर अब्बास था, ये मुस्तमल होने की हैसियत से शॉर्टकट हो गया है, कमर अब्बास हो गया है। लेकिन मैं कहूँ कमर अब्बास यानी अब्बास का कमर, फ़खर अब्बास जी अब्बास का फ़खर, ग़ुलाम हुसैन देखिए कितना माना तब्दील हो जाएगा, यानी खुद बंदा महसूस करेगा, खुद जवान महसूस करेगा। इसीलिए कहा गया है कि अपने बच्चे को इंसानियत से करीब करने के लिए पहला स्टेप ये है कि बच्चे का नाम अच्छा तजवीज करो। मिलकर दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब क्या है कि वो इंटरनेट से नाम निकाल लेते हैं, ये तुर्की नाम है, वो फला नाम है, ये वाला क्या क्या हो रहा है। करबला का मकसद इंसान बनाना है, इंसानियत से करीब करना है। शनाख्त आशूरा ये कि करबला को पहचाना जाए। देखिए जब भी कोई वाकया होता है ना, और जितना जितना उसको टाइम गुजरता रहता है, उस वाकये में तब्दीली आने लगती है। जब पानी ज़मीन से उबलता है बड़ा शफाफ होता है, जब पहाड़ से बर्फ़ पिघलती है बड़ी शफाफ होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता रहता है पानी, खस खाशा आलूदगी कीचड़ बहुत सारी चीज़ों में शामिल होती है, आलूदा होता रहता है। चश्मा जब उबलता है बहुत शफाफ होता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है जैसे जैसे आगे बढ़ता है आलूदगी उसमें शामिल होती रहती, शफाफियत वो नहीं रहती। उसी तरह एक वाक़ जब रूनमा होता है, जब वजूद में आता है, जब वो पज़ीर होता है, जितना जितना ज़माना गुजरता चला जाएगा उसमें वो शफाफियत नहीं रहेगी। मसलन जिसको उर्फ आम में कहते हैं मैं इनके कान में कुछ कहूँ या आपके कान में कुछ कहें, आप उनको उनको जब वापस घूम के आएगी तो हकीकत कुछ और होगी। यही होता है, आप करके देख लीजिए, घर में कोई 10 अफराद हों करके देख लीजिए कि पता चल जाएगा। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कोई भी वाकया होता है तो पहले कोशिश की जाती है कि जितने भी आसार असली हैं उसके उसको मिटा दिया जाए, उसको उसको रंग दूसरा दिया जाए। करबला के साथ भी ये वाकया हुआ। करबला एक वाकया नहीं है, करबला एक तहजीब है, एक कल्चर है, एक लाइफ स्टाइल है, एक सोचने समझने और हकीकी ज़िंदगी या जो कहूँ इंसानियत को पाने के मेथड का नाम, उस यूनिवर्सिटी का नाम करबला और आशूरा है। जो जितना इस दर्सगाह में तालिबे इल्म बनता चला जाएगा, तालिबे इल्म बनता शनाख्त आशूरा यानी करबला के आशूरा की यूनिवर्सिटी में दाखिला ज़रूरी है। माँ बाप पैसा खर्च करते हैं फ़लाँ स्कूल में, फ़लाँ कैमरे सिस्टम में, किताबें इतनी, स्कूल फीस इतनी, कन्वेंस इतना, मंथली फीस इतनी, एनुअल अखराजात इतने, लेकिन क्या बच्चा तालीम हासिल करे, होना चाहिए। लेकिन ये सब मुकदमात हैं, ये मुकदमात हैं कि बच्चा, लेकिन बच्चा खुद ना पढ़े, तालीम में दिल नहीं लगाए, अपने वक्त कहीं और बर्बाद करे, तो क्या है ये सारे मुकदमात, यूनिफॉर्म दिलाना, स्कूल में एडमिशन दिलाना, सालाना अखराजात, रोज़ा हर महीने की फ़ीस के अखराजात, कन्वेंस के अखराजात, रोज़ाना के टी ए डी ए, यही जो जो पॉकेट मनी दी जाती है, ये कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं चाह रहा। शनाख्त करबला की दर्सगाह में तालिब इल्म बनना ज़रूरी है अज़ीज़ानी गिरामी, और उस तालिबे इल्म बनने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, वो इंसानियत का एहसास आप में होना चाहिए। शिया होना ज़रूरी नहीं है करबला के लिए, सुन्नी होना ज़रूरी नहीं है, काफिर होना ज़रूरी नहीं है, इंसान होना ज़रूरी है करबला के लिए। जो जितना इंसान है खुद बखुद करबला उसको खींच के ले आएगी अपनी तरफ। करबला वो खुदाई मकनातीस है कि जिसमें जहाँ जो सलाहियत इंसानियत है अपनी तरफ जज्ब कर लेती है। लिहाजा करबला के लिए यूनिफॉर्म है, मसलन हम शब मसलन अय्याम आज़म में काला लिबास पहनते हैं, जैसे आप बच्चों की यूनिफॉर्म पहनाते हैं, एक मेथड को ओबे करते हैं, आप उसके पीछे चलते हैं, आप मजलिस में आते हैं, मातम करते हैं, मसाइब सुनते हैं, गिरिया करते हैं, जुलूस में जाते हैं, एक मेथड है ना, एक तरीक़ा है, उसको आप उसके पीछे चलते हैं। जिस तरह के स्कूल का सिस्टम होता है, बच्चा आएगा क्लास में बैठेगा, होमवर्क दिया जाएगा, चेक होगा, इम्तिहान होंगे, जी ये सारा सिस्टम होता है। लेकिन क्या ये सब बच्चों को तालीम याफ्ता कर सकते हैं? معاون ہو سکتے ہیں لیکن اصل بنیادی کردار طالب علم کا ہے۔ ہم کتنا ہی ماتم کیوں نہ کر لیں، ہم کتنا ہی کالے لباس کیوں نہ پہن لیں، ہم کتنی ہی عزاداری کیوں نہ کر لیں، وہ طالب علمانہ احساس اگر ہم میں پیدا نہ ہو کہ کچھ سیکھیں درِ حسین سے، یونیورسٹی آف کربلا سے کچھ کسب فیض کریں، جب تک یہ احساس زندہ نہیں ہوگا کالے کپڑے پہننا، مجلس میں آنا، مجلس میں جانا، جلوس میں جانا، علم اٹھانا، تابو اٹھانا کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ احساس بیدار ہونا چاہیے۔ شناخت عاشورہ در حقیقت اس احساس بندگی کو، احساس نیاز کو، احساس ضرورت کو ہمارے اندر پیدا اور اجاگر کرنا چاہتی ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو شناخت عاشورہ ضرورت، تو میں عرض کر رہا تھا جب ایک واقعہ رونما ہوتا ہے تو جتنے جتنے زمانہ گزرتا جاتا ہے اس میں ایڈیشنز، اضافے، لوگوں کی آرا، نظریات شروع ہو جاتی ہیں، اور واقع کربلا جس کو چھپایا گیا، جسے پردہ ڈالا گیا، نہ صرف پردہ ڈالا گیا جس کے ظاہری آثار کو بھی مٹانے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ قبر امام حسین علیہ السلام پر کئی مرتبہ حملہ کیا گیا، شہر کربلا پر کئی مرتبہ حملہ کیا گیا۔ آل سعود جب قابض ہوئے تھے مکہ مدینہ، اس کے بعد انہوں نے عراق اور کربلا اور نجف پہ حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس دور میں دوبارہ انہی کی فوج نے، داعش نے یہ جسارت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کیا کہنے اس مرجعیت کے، کیا کہنے اس ولی، اس عظیم فقی کے، کیا کہنے اس امام سیستانی کے کہ جس نے واقعا عراق کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہیں فقہا، یہ ہیں علماء، یہ ہیں شاگردان مکتب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس بنا پر کربلا پہ حملہ ہوا، تاریخ موڑا گیا۔ تو اب کربلا کے حقیقی شناخت کیسے حاصل کریں؟ کہتے ہیں آئی وٹنس لایا جائے، چشم دید گواہ کو لایا جائے۔ بھائی ہم نے ایسا سنا تھا، ہم ایسا تھا، ہم گزر رہے تھے، تو کہتے ہیں یہ سب ٹھیک قبول ہے، لیکن آئی وٹنس کون ہوتا ہے؟ جو جائیں وہ کواں پر موجود ہو جائے، حادثہ میں آئی وٹنس، یعنی چشم دید گواہ، کہ میں نے خود دیکھا۔ وہ نہیں ہوتا تو پھر سیکنڈ درجے پر کوئی اور وٹنس، کوئی اور گواہ، کوئی اور شاہد ہوتا ہے۔ وہ نہیں ہو تو پھر تیسرے درجے پر گواہوں کو، گواہوں کے درجے ہوتے۔ کربلا کی شناخت کے لیے، عاشور کی شناخت کے لیے تاریخ میں کوشش کی گئی کہ مقصد کربلا کو پامال کیا جائے، تحریف کر دی جائے، تبدیل کر دیا جائے، اور مسلسل کوششیں آج تک جاری ہیں، جس کی جانب کل بھی میں نے اشارہ کیا۔ چنانچہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، تحقیق کی جاتی ہے، مقاتل لکھے گئے، تاریخیں لکھی گئیں، روداد لکھی گئی، اپنوں نے لکھی، غیر لوگوں نے لکھی، مثلا حمید مسلم سنی ہے، یزید کی فوج کا رائٹر ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب جنگ ہوتی کچھ لوگ ہوتے جو کیپچر کر رہے تھے ہر چیز کو، زمانے میں کیمرہ تو تھا نہیں، اس کو لکھتے تھے۔ بہت سی روایتیں جو ہیں حمید مسلم سے ہیں، بہت سی روایتیں مثلا خود امام حسین سے ہیں، بہت سی روایتیں آئمہ سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوئی ہیں، بہت سی روایتیں جو جناب زینب سے ہیں، بہت سی روایتیں امام سجاد سے ہیں، بہت سی روایتیں جناب سکینہ سے ہیں، بہت سی روایتیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں۔ تو مختلف لوگ تھے، ہماری طرح سے ادھر سے بھی، تو کوشش ہوتی کسی بھی واقعے کو انالائز کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے دس سے اول کے منابع، دس سے اول یعنی فرسٹ ہینڈ منابع کو اختیار کیا جائے، تاکہ اس کی اصلیت، شفافیت، حقیقت، نورانیت، قداست باقی رہے۔ کیونکہ جب فرسٹ ہینڈ گاڑی آپ کو مل رہی ہو تو آپ سیکنڈ ہینڈ گاڑی کبھی نہیں لیں گے اسی قیمت میں۔ جب آپ کو فرسٹ ہینڈ گاڑی، ایک اونر کی گاڑی مل رہی ہے جس کو، جس نے استعمال کیا، آپ کبھی سیکنڈ ہینڈ کی نہیں لیں گے اسی قیمت میں اچھی گاڑی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں ایک آدمی کی ہاتھ میں ہوگی، اس کا مطلب ہے ایک آدمی چلائی، دو آدمی چلا چکے ہیں یعنی اس کی کیفیت کم ہو جائے گی، تین چار آدمی کے ہاتھ میں بک چکی ہے اس کی کیفیت کم ہو جائے گی۔ فرسٹ ہینڈ منابع، دس سے اول کے سورسز پر آپ جائیں گے تاکہ اس کی حقیقت شناخت کو، اس کو باقی رکھا جائے۔ شناخت عاشورہ کو باقی رکھنے کے لیے شفافیت کو، نورانیت کو، قداست کو، ہدایت کو، پیغام کو، ہر چیز کو اس کی اوریجنلٹی کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے हमें लाजमन अकलन शरअन रुजू करना पड़ेगा फर्स्ट हैंड मनाबे की जानिब, दस से अव्वल के मनाबे। वो कौन है? खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। उनसे बढ़कर कोई और मंबा नहीं हो सकता, कोई और सोर्स नहीं हो सकता करबला की शनाख्त के लिए। इमाम हुसैन से बढ़कर भी कोई सोर्स होता है करबला के लिए? हजरत ज़ैनब से बढ़कर भी कोई सोर्स हो सकती है करबला की शनाख्त के लिए? हम कहें नहीं, हम दूसरी सदी में तीसरी सदी में जाएंगे जो किताबें लिखी गई हैं। नहीं, जनाब ज़ैनब मौजूद है तो पहले मरहले में जनाब ज़ैनब से मसलन अख्ज़ किया जाएगा, कस्बे फैज़ किया जाएगा, बीबी आप बताइए करबला में क्या हुआ। इसलिए मैंने कहा बहुत से मकातिब में जनाब ज़ैनब से रिवायतें हैं। उसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रिवायात हैं जो सीना बसीना मुंतकिल हुई हैं। हज़रत अब्बास से रिवायात हैं मसलन जो सीना बसीना मुंतकिल हुए हैं। हर एक शोदा करबला में से और उसरा करबला में से हर एक ने मसलन इसको बयान किया है। तो दस से अव्वल के मनाबे, लिहाजा सबसे पहली शख्सियत जो करबला शनासी के लिए मोतबर तरीन नाम है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। और जिसको मैंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक शनाख्ती कार्ड देखे जा रहे हैं करबला का, करबला को पहचानना। जब आप कहीं जाते हैं तो आपको रुका जाता है, अपनी शनाख्त कराइए, ठहरिए, हू आर यू, कहाँ जा रहे हैं, कौन है आप, शनाख्त कराइए। आप शनाख्ती कार्ड देते हैं, नाम पता हर चीज़ लिखी होती है, चेक किया जाता है, अच्छा नाम ये बताइए, जाइए। करबला की शनाख्त क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वसीयत है, शनाख्त आशूरा। यानी अगर करबला को समेटा जाए एक हदीस में, एक हदीस में, वो इमाम हुसैन की हदीस है जिसको मैं दो रोज़ से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसके बग़ैर असर मुमकिन नहीं है शनाख्त करबला। करबला को अगर माइक्रो सूरत में देखा जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यह हदीस है जो मोहम्मद इब्ने हनफिया के नाम इमाम ने की है। इसमें फरमाते हैं ये वसीयत है मोहम्मद इब्ने हनफिया को, अपने भाई के नाम ये वसीयत करो। हुसैन गवाही देता है खुदा वाहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। लेकिन क्या उसके बाद मौला अली की विलायत की गवाही दी? बेटे हैं, फर्जंद हैं, इमाम वक्त हैं, तवज्जो रखिएगा। विलायत अली की गवाही दी इस वसीयत में? यकीनन, मैंने पहले भी अर्ज किया था इमाम हुसैन का मकसद विलायत का दिफा था। यकीनन विलायत के बगैर दीन कुछ नहीं है। दीन अगर जिस्म है तो रूह जो है वो विलायत है, क्योंकि अल्लाह ने अली की विलायत को अपनी विलायत, रसूल की विलायत के रदीफ में अर्ज किया है, रदीफ में, तवज्जो रखिएगा। यकीनन अल्लाह की विलायत ऊपर है लेकिन रदीफ वही है, सिलसिला वही है, स्टेज वही है, तवज्जो रखिएगा। मुमकिन है कि जो पहले नंबर पर वो बड़ी शख्सियत हो लेकिन एक ही स्टेज पर है, दूसरे नंबर पे जो शख्स बैठा होगा उसी स्टेज पे होगा, वो दूसरे नंबर पे होगा, जो तीसरे नंबर पे होगा मतलब तीसरी विलायत, रदीफ वही है, स्टेज वही है। अल्लाह की विलायत, रसूल की विलायत, अली की विलायत, तो अली की विलायत को अल्लाह ने कुल में रखा है, साहिबा करार दिया है, छतरी करार दिया है। इसके अलावा दीन से अगर विलायत निकाल ली जाए अल्लाह की, रसूल की और अली और औलाद अली के, दीन में कुछ नहीं बचेगा, खुश इबादत बच जाएंगी। जिसको मैंने पहले भी अर्ज़ किया, ए अली तुम्हारी विलायत के बगैर जो खुदा की बारगाह में आएगा उसके आमाल हक्त हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, अकारत चले जाएंगे, मुँह पर मार दिए जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो बज़िद हैं कि नमाज के तशहुद में जब तक कि विलायत को ना घुसेड़ा जाए, माजरत के तौर आमियाना लफ्ज़ बोल रहा हूँ, उनको चैन नहीं आता। ये अकल के अंधे हैं। जब खुदा कह रहा है कुल, इस्लाम से भी ऊपर है विलायत, तवज्जो रखिएगा, विलायत इस्लाम से ऊपर है, उसकी अहमियत, विलायत इस्लाम से ऊपर है। ये मैं नहीं कह रहा, पांचवें इमाम कह रहे हैं, जितनी अहमियत नमाज और रोज़ा हज और ज़कात की उससे ज़्यादा अहमियत विलायत की है, क्योंकि विलायत है जो नमाज को नमाज, रोज़े को रोज़ा, हज को हज, ज़कात को ज़कात बना रही है। खुदा कहाँ करार दे रहे हैं? छत। और ये उस विलायत के टुकड़े करके नमाज के तशहुद में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं अकल से पैदल अफराद। आप देखिए काम क्या हो रहा है, तो तवज्जो रखिएगा कि कोशिश की जाएगी हमेशा। अब मौला ने कहा हुसैन गवाही दे तो खुदा माबूद वाहिद है, कोई वाहदहू ला शरीक, कोई शरीक नहीं। इसके बाद कहा मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। ये काफ़ी है, काफ़ी है ये। दायरे इस्लाम में दाखिल होने के लिए, और इस्लाम दर हकीकत विलायत अली के बगैर इस्लाम नहीं है। मिलकर दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फिर इस वसीयत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि क़याम करूँ और मैं निकला हूँ तलब तलब उम्मत जदी, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने के लिए, जिसको मैंने कल गर्ज किया, ये इस्लाह करने तलब यानी किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। देखिए मसलन यहाँ एक बच्चा बैठा है, मैं उसको मुझे पानी की तलब है मुझे दे दो, क्या इस पर वाजिब है, क्या मेरा हक है इससे पानी मांगूँ? नहीं, मुझे पानी पीने की तलब है, तड़प है, तिश्नगी है, मुझे पानी दे दो, यानी कोशिश करूँगा मैं इससे नहीं किसी और से, ये नहीं होगा तो खुद उठ के चला जाऊँगा, यानी किसी ना किसी अंदाज से तो मैं पानी तक पहुँचने की कोशिश करूँगा ना भाई। अगर कोई नहीं है तो खुद मैं खुद बनफ से नफीस कोशिश करूँगा, कोई है तो उससे कहूँगा भाई मुझे पानी दे दो। मसलन अर्ज़ कर रहा हूँ, मसलन मैं मेम्बर बैठा हूँ, अब हर दफ़ा उतर के नीचे मुझे भी अच्छा नहीं लगता किसी से मांगूँ, लेकिन ये भी मजलिस के शान के ख़िलाफ़ है कि खुद मेम्बर से उतरूँ, खुद पानी पीऊँ, खुद बैठ जाऊँ, ये भी मजलिस ना हुई। तो क्या है कि कोई करीब बैठा हो कि जिससे मैं तलब करूँ, जैसे कि हमारे भाई बैठे हैं सफाई कर रहे हैं माशाल्लाह से, खुदा इनको दस्त अमीर अल-मोमिनीन से सैराब करे इंशाअल्लाह। तो तलब करना क्या है? तलब में इस्तेहकाक नहीं होता, तलब में हक नहीं होता, तलब ये कि मैं कोशिश करता हूँ इनसे पानी मांगू, आपसे पानी मांगू, कोई नहीं तो खुद करूँ। इमाम हुसैन कह रहे फीत ले तलब ले सलाह, मुमकिन है हुसैन कामयाब हो जाए इस तलब में, मुमकिन है इंसान हुसैन जो है पूरे लोगों को इंसानी से करीब कर सके, मुमकिन आने आइंदे वाले ज़मानों में, क्योंकि हुसैन नतीजे के मोहताज नहीं हैं, हुसैन नतीजे के मुंतजर नहीं कि नहीं अपनी ज़िंदगी में मैं तमाम लोगों को कल हक पढ़ता देखूँ, नहीं, मुकद्दर नहीं है इमाम हुसैन के लिए, असल रसूलुल्लाह के लिए मुकद्दर नहीं चाहिए कि तुम पूरी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में कलमे इस्लाम का परचम लहराते हुए देखो। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलल दीन कुल्लिहि वलव करिहल मुशरिकून, अल्लाह वो जिसने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा, क्यों क्यों भेजा, लियुज़हिरहु ताकि दीन को गालिब कर दे, गलबा दे दे, फौके दे दे, फतह दे दे। रसूल की ज़िंदगी में हुआ, पूरी दुनिया पर परचम इस्लाम चाहे नहीं चाहे मकदूर नहीं है रसूल के लिए, इमाम अली के लिए मकदूर नहीं है कि हर जगह कामयाब हो जाए, नतीजे के जिम्मेदार नहीं है अहले बैत, वजीफे की अदायगी के जिम्मेदार हैं। हमें जो हुक्म दिया है, जो बहस मैंने छेड़ी थी कि कुछ वो हैं कि जिनका नतीजा हमारे हाथ में, नमाज पढ़ो बुराइयां से दूर, रोजा रखो तकवा मिल जाएगा, ज़कात दो माल पाक हो जाएगा, खुम्स व मोहब्बत अहले बैत बढ़ जाएगी, नतीजा हमारे पास है। लेकिन बहुत से नतीजे, बहुत से काम ऐसे हैं जिनका नतीजा हमारे पास नहीं है, कहा कि काम करो मुमकिन है कामयाब हो जाओ, जिहाद करो अल्लाह के नाम में, कौन से कामयाब हो जाओ, हो सकता है गाजी हो जाओ, हो सकता है शहीद हो जाओ, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करो, लोगों को समझाओ भाई ये गलत है, ये हराम, ये जायज़ है, ये वाजिब, इसको कीजिए इसको ना कीजिए, आपका काम बता देना है, तालिबान बनना नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ले तलब, इसमें बहुत बड़ा नुक्ता मौजूद है, ये नुक्ता वही है जो आए मस्जिद में लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए उसवा हसना है। तवज्जो रखिएगा, अगर अल्लाह ये कह देता रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए हसना है, कमर टूट जाती हमारी, शायद मैं इस नुक्ते को कम हक वाजे न कर सकूं, मैं सिर्फ कह के गुजर रहा हूं, एक वक्त कहूंगा रसूल की जिंदगी में उसवा है, एक वक्त खुद कहूंगा रसूल की जिंदगी उसवा है, फर्क है। अगर खुद कहे रसूल की जिंदगी उसवा है, कमर टूट जाती हमारी, रसूल जैसा अमल बजा लाना मुश्किल है, कहा रसूल की जिंदगी में, फी रसूलिल्लाह अली की जिंदगी में उसवा है, हुसैन की जिंदगी में उसूल है, उन्हें अपनाओगे तो हुसैनी बनते चले जाओगे। बिल्कुल दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ले तलब ले सलाह, मैं तलब करना चाहता हूँ, कोशिश करना चाहता हूँ, स्ट्रगल करना चाहता हूँ, मामले की नतीजे इमाम हुसैन ने नहीं देखा, बज़ाहिर बज़ाहिर इमाम हुसैन शिकस्त हुई, लाशा पामाल हो गया, सामान ताराज हो गया, बच्चों को औरतों को कैदी बना लिया, यानी हर तरह से अगर फौजी लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ शिकस्त इमाम हुसैन का नाउज़ बिल्लाह मुकद्दर बनी है ज़ाहरी तौर पर, लेकिन हकीकत में हुसैन शिकस्त नहीं खा रहा है,
بقول امام کوئی نہیں، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بنو امیہ کو دفن کر دیا تھا، لاشا یزید کا پامال، حسین کا پامال نہیں ہوا تھا، حسین نے یزیدیت کو پامال کر دیا تھا. ہتھکڑیاں سید سجاد کو نہیں پہنائی گئی تھیں، ہتھکڑیاں در حقیقت یزیدیت کو پہنائی گئی تھیں. یاد رکھیے گا، بعض اوقات ہم بھرا ہوا گلاس دیکھنے کے بجائے آدھا خالی گلاس دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں اور یا ان دنیا داروں کو کربلا میں شکست کا پہلو نظر آتا ہے. جس کے ساتھ خدا ہو اس کو شکست اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. یہی وہ اصول ہے جس کو امام حسین علیہ السلام اپنی دعا دعائے عرفان فرما رہے ہیں، خدا جس نے تجھے پا لیا، توجہ رکھے گا، جس نے تجھے پا لیا، تو جس کو مل گیا ساری دنیا بھی اس سے چھڑ جائے، اس کا کچھ نہیں بگڑا، اور جس نے تجھے چھوڑ کر ساری دنیا کو بھی پا لیا اس نے کچھ نہیں پایا. یہ ہے حسین، یہ ہے معرفت حسین، یہ ہے توحید حسین، یہ ہے عشق حسین، اور اسی کو شناخت عاشورہ کہا جاتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا، شناخت عاشورہ. امام کہنے اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اريد ان آمر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کیا کام کروں، نیکیوں کا حکم دوں، وانہا عن المنکر، برائیوں سے روکوں. امام حسین کیا سبزی فروش سے کہنا چاہتے تھے بھائی پورا طلوع کم نہیں تولو، دودھ والے سے کہہ رہے ہیں کہ تم پانی نہ ملاؤ دودھ میں، مرچ مسالوں سے لے کہہ رہے ہیں کہ اس میں برادہ لکڑی کا نہیں ڈالو، چھالیاں بنانے والوں سے کہہ رہے ہیں، سپاری بنانے والوں سے کہ اس میں پلاسٹک کے ٹکڑے مت ڈالو، چائے کی پتی والوں سے نعوذ باللہ امام حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں جو ہے رنگ نہ ملاؤ. یہ اريد ان آمر بالمعروف، نیکی کو حکم دینا چاہتا ہوں. نماز میں والا والین کا جو زواد ہے وہ چھ الف کے برابر کھینچو. یہ حکم دینا چاہتے تھے امام حسین آپ کے خیال میں؟ کون سا اصلاح کرنا چاہتے تھے، کہاں اصلاح کرنا چاہتے تھے، وہ پوائنٹ کیا تھا؟ دیکھیے طبیب جو ہوتا ہے نا، جب آپ اسے بتا اپنی سمپٹمس بتاتے ہیں، علامت بتاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے جسم میں درد ہے فلاں ہے، تو وہ آپ کہتے ہیں سینے میں درد ہے آپ کا پیر چیک کرتا ہے، آپ کہتے ہیں آنکھ میں درد ہے آپ کا گھٹنا چیک کرتا ہے، آپ کہیں کیسے بیوقوف ڈاکٹر ہے. میں کہہ رہا ہوں سینے میں درد ہے، یہ میرے گھٹنا چیک کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں میری آنکھ میں درد ہے، یہ مثلاً میرے پیر کا انگوٹھا دیکھ رہا ہے. طبیب کون ہے کہ جیسے ہی آپ نے بتایا فوراً وہیں ہاتھ رکھے گا کہ جہاں آپ کا درد ہے؟ طبیب حاذق، طبیب ماہر وہی ہے کہ جو تشخیص مرض کرنے کے لیے اصل جگہ پہ ہاتھ رکھتا ہے. امام حسین کہہ رہے ہیں امت ایک بیماری میں مبتلا ہو گئی، اس کا نام یزید ہے. اللہ یزید اور یزیدیت، حسین اور حسینیت، یاد رکھے گا. یہ بہت سے لوگوں کو یزیدیت حسینی سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم جب حسینیت کہتے ہیں نا تحریک کربلا، ان کو بڑا مرچیں لگتی ہیں، اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں. بہرحال چھوڑ دیں اس موضوع کو، کہتے ہیں حسین اور یزید کا بھی، یہ یزیدیت اور حسینیت نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال ان کے اپنے مقاصد ہیں، میں صرف نظر کرتا ہوں. امام کہہ رہے ہیں کہ یزیدیت اور یزید ایک بیماری ہے جو امت کو لگ گئی، اور ایسی بیماری، ایسا ناسور یا ایسا انفیکشن، آسان زبان میں کوئی بچے سمجھ جائیں، ایسا انفیکشن ہے کہ جس کے بعد اسلام تڑپنے لگا ہے، بلکنے لگا ہے، مچلنے لگا ہے، درد میں کرانے لگا ہے. امام اسے کہتے ہیں اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید، جب امت مسلمہ اسلام قرآن یزید کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، وعلی الاسلام السلام، اسلام کی فاتحہ پڑھ لو، فاتحہ پڑھ لو اسلام کی، اسلام کو دفنا دو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اسلام کو کیا بیماری لگ گئی، کینسر ہو گیا اسلام کو یزیدیت کا. لیکن کیا حسین نے چھوڑ دیا، تر کر دیا، گھر میں بیٹھ گئے، تلاوت کرتے رہے، لا تعلق ہو گئے، روزے رسول کی مجاوری کرتے رہے، صدقات خیرات دیتے رہے، ویلفیئر سینٹر چلاتے رہے، یتیم و غریبوں کی مدد کرتے رہے، یتیم بچوں کی شادی کرواتے رہے؟ نہیں، نکلے
कहा कि अब ये वक्त नहीं है, जो काम थे करता रहा, उसका वक्त था वो काम किया, अब ज़रूरत है कि उम्मत को कैंसर हो गया यजीद का, इसका मुकाबला करूँगा। वाला इस्लाम अस्सलाम, अगर कोई खड़ा ना हो इस यजीदियत की बीमारी से, इस कैंसर सरतान की बीमारी इस्लाम को ना पहुँचाए, तो इस्लाम की फातिहा पढ़ लो। लेकिन मैं इतनी आसानी से इस्लाम को मरने नहीं दूँगा, मैं इतनी आसानी से इस्लाम को ख़त्म होने नहीं दूंगा। ये शनाख्त आशुरा, इस्लाम की बका, विलायत की बका। विलायत कहाँ नज़र आएगी? विलायत कोई कड़ा है क्या? पहले आप बहुत बड़े वली हो जाएंगे, मवाली हो जाएंगे। कोई अकीका अंगूठा है, आप देखते हैं बड़े बड़े अंगूठे पहन रहे होते हैं, वो अकीकी ज़्यादा बड़ी अंगूठी पहनने से कि नमाज जल्दी कबूल हो जाती है। कहो कि मामूली से नग पहन लो अकीकी अंगूठी, क्यों? ताकि विलायत महवर बन जाओ। मोमिन की निशानियों में से आप एक अंगूठी पहनता है। इसको मैंने पहले भी कहा कि ये वो पत्थर है जिसने सबसे पहले मौला अली की विलायत की गवाही दी। तो कहा कि मोमिन के हाथ की जीनत वो पत्थर बने जिसने अली की विलायत की गवाही दी है। यानी मोमिन का पसंद नापसंद का जो मायार है, स्टैंडर्ड, वो विलायत मौला है। जो विलायत के साथ है वो इनके साथ है, जो विलायत के मुखालिफ हो इनके मुखालिफ है। और यही वो अल्फाज हैं जो हदीस के सामने भी नज़र आते हैं, ज़ियारत है आइम्मा भी नज़र आते हैं, खुसन ज़ियारत आशूरा में नज़र आते हैं। इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम, मौला जो आपकी विलायत पर है मैं उससे दोस्ती करता हूँ, और जो आपसे जंग करें इन्हें आपके मुखालिफ आपकी विलायत के मुखालिफ है, मैं उससे जंग कर रहा हूँ। विलायत महवर होना चाहिए जिन्हें शनाख्त आशूरा। इमाम हुसैन कह रहे हैं कि हुसैन इतनी आसानी से इस्लाम को मरने नहीं देगा, मैंने इस्लाम के दामन में परवरिश पाई है। हुसैन कौन? जो लाब रसूल मुसलसल चूसे जबान रिसालत मार। कहने वाले कहते हैं कि एक दफ़ा रसूलल्लाह हुजरे में तशरीफ़ ले गए, बचा हुआ दूध या पानी था। अबू हुरैरा आए और उन्होंने आओ देखना था, और रसूल का जूठा दूध पी लिया तो हाफजा इतना बढ़ गया, डेढ़ दो साल में हज़ारों अहदीस नकल कर दी। मैंने कहा सुभान अल्लाह, रसूल का झूठा दूध या पानी आया पीने से माशाल्लाह आप में इतनी सलाहियत पैदा हो गई कि जो हदीस जिस ज़माने में आप नहीं थे वो भी आपने नकल कर डाली माशाल्लाह से। यानी आपकी मेमोरी पीछे ज़माने तक पहुँच गई। लेकिन जो ज़बान रिसालत आप चूस चूस के बड़ा हो, उसकी कोई हदीस सहाय सत्ता में नज़र नहीं आती। अजीब इत्तेफाक है, जो रसूल का दूध झूठा पी ले वो तो मेमोरी कार्ड बन जाता है जी, जो पिछली हदीस है वो भी बता देगा, और जो रसूल की ज़बान चूस के बड़ा हो। रुक मोहम्मद बस वक्त पूरा हो गया, मज़द चाहता हूँ बल्कि इजाफी हो गया, मसायब के वक्त कम रह गया। अज़ीज़ा निगरानी, शनाख्त आशूरा ज़रूरी, दस्त अव्वल के मनाबे। खुद हुसैन से पूछे कर्बला क्या है, मकसद कर्बला क्या है, मुझ पे भी जो है इन्हिसार मत करें, मुझ पे भी इन्हिसार मत। मैं वाजे कह रहा हूँ, अमामों से धोखे मत करें। आज अमामों के ज़रिए से धोखा दिया जा रहा है। हमारे यहाँ अमामे का बड़ा एहतराम था, आयतुल्लाह का बड़ा एहतराम, मुश्त का बड़ा एहतराम। दुश्मन ने जाली आयतुल्लाह क्लोनिंग, क्लोनिंग समझते हैं ना, शबी साजी जिसको कहा जाता है, यानी आप ही की ये एक और कॉपी पार्ट टू आपका बना देते हैं। ये साइंस ने की है, जिसको इस्लाम ने कहा ये दुरुस्त जायज़ नहीं है, इस्लाम में शरण दुरुस्त नहीं। हाँ, जानवरों के सिलसिले में कहा क्लोनिंग की जा सकती है, लेकिन आयतुल्लाह खामने दूसरे महाराज ने कहा कि क्लोनिंग जो जायज़ नहीं है इस तरीके से। बहरहाल, तो ये वो हकीकत है जिसे दर्क करना चाहिए कि शनाख्त आशूरा क्या है, इमाम से पूछा जाए। और इस इंसानियत को बाकी रखने के लिए हुसैन इब्ने अली एक गुलदस्ता सजा के ला रहे हैं, जिसमें असगर भी है, अकबर भी है, अब्बास भी है, और नूर मोहम्मद भी है, सिया हबशी गुलाम जौन भी है, हबीब भी है, औसदा भी हैं, सैदावी भी हैं, शहदाए करबला है। हुसैन ने गुलदस्ता दिया है तुम्हें, इसकी हिफाजत हम बिलाफ़िल ज़रूरी है। और उन देखिए मुख्तलिफ़ फूल होते हैं ना गुलदस्ते में, हर फूल की
अपनी रंगत अपनी खुशबू होती है, लेकिन करबला के गुलदस्ते में हुसैन एक से एक बढ़ के फूल लाए हैं। कभी अब्बास का फूल उठा के सूंघते कहते हैं कि सुभान अल्लाह, कभी असगर का फूल उठा के सूंघे कहेंगे सुभान अल्लाह, लेकिन अली अकबर जैसा फूल पूरे करबला में कहीं नहीं मिलेगा। वो जिसका जिक्र खुद महमूद महमूद ने खुद कर रहे हैं।
क्या कह रहे हैं, जब बेटे ने आके कहा बाबा इजाज़त दीजिए, कह के जाओ इजाज़त लेकर आओ, माँ बहनों से रुख्सत हो लो, फूफी से रुख्सत हो लो। उसके बाद जब आए एक हसरत भरी निगाह की उसे। देखिए करबला को सिर्फ मैं बारह कह रहा हूँ, करबला को सिर्फ अक्ल इंसानी पे मत धरकें, करबला को इरफानी निगाह से रूहानी नुक्ते नगर से इंसानी जज्बात के साए में परखें, तब जब करबला का हकीकी मफहूम और माना समझ में आएगा। बाप है ना, सीने में जो दिल धड़क रहा है उसमें एहसासात हैं। ऐसा नहीं कि इंसान अगर आरिफ बन जाए तो उसके एहसासात ख़त्म हो जाते हैं। आयतुल्लाह साहिब तफसीर मीज़ान अल्लामा तबतबाई का जब कि ज़ौजा का इंतकाल हुआ, बहुत गिरिया फरमा रहे थे, कहा कि क्या आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी नहीं हैं? कहा कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ, लेकिन ज़ौजा का शरीक हयात का जो साथ छूट गया है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तवज्जो रखिएगा, हुसैन के लिए बेटे का जुदा करना वाकई सख्त, और बेटा भी जो हाथों को उठा के खुदाबंदा गवार है ना, अब उस कौम की तरफ उस गुलाम यानी नौजवान को, गुलाम यानी नौजवान को भेजना हूँ जो सूरत में सीरत में किरदार में गुफ्तार में तेरे रसूल से मुशाबे था। अल्लाह अकबर। और अदब अली अकबर वाकई अजीब है, यानी हमारे नौजवानों के लिए सीरत अकबर को बयान किया जाना चाहिए, जिसको इमाम रज़ा ने कहा कि अगर लो अलमन्नास महासिना कलाम लत्तबाउन, अगर लोगों को हमारे किरदार और अखलाक की खूबियों का इल्म हो जाए वो दीवाने हो जाए, हमारी इताअत के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हमने बताया नहीं अली अकबर की सीरत क्या है। अली अकबर का एक घर था जो ऊंचे मुकाम पे था, जहाँ रात को दिए जलते थे, मशाल रोशन रहती थी, कोई भूला भटका आए तो यहाँ पर आ जाए। अल्लाह अकबर। ये है शबी रसूल। ये जो आपने सुना कि इमाम हुसैन जा रहे हैं और अकबर ने जब इमाम हुसैन का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो जनाब अकबर ने फौरन बाबा से पूछा, बाबा ये आए इस तरजा ये इन्ना लिल्लाह की आयत क्यों पढ़ी? इसका मतलब है अकबर कितना करीब है, कितना साथ है, कि मामूली सी हरकत भी बाबा को, बाबा की जेर नज़र रखे, बाबा ये आयत क्यों पढ़ी? मामूली इंसान जब खाम सोड़ता है तो ऐसा तो नहीं कि चीख मारे। इमाम हुसैन जैसी शख्सियत इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, फौरन अली अकबर के कान में इतने इतने करीब है इमाम को। ये वो बेटा है, ये वो मार्फत रखने वाला जवान है, तो खुदवंदा अब इस कौम की तरफ उसको भेज रहा हूँ। अदब है अली अकबर का। यही वजह है कि जब हजरत अली अकबर आगे बढ़े और कहा बाबू मुझे इजाज़त दीजिए, मुस्तनद मकातिब ने लिखा इमाम हुसैन के घर से पहली कुर्बानी अली अकबर की है, पहली कुर्बानी बनी हाशिम से, मुस्तनद मकातिब दर्ज कर रहा हूँ। एक दफ़ा घोड़े पे बैठाया, नज़र डाली, कहा जाओ बेटा खुदा हाफिज। अली अकबर घोड़े पे बैठे आहिस्ता आहिस्ता घोड़े को दौड़ाने लगे, अली अकबर के कान में आवाज़ आई जैसे कोई पीछे आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा, बूढ़ा बाप कमर को छावे सर जमीने कर बबला कर अपने पैरों को रगड़ता हुआ आ रहा है। हुसैन के पैरों में ताकत नहीं है। अल्लाह अकबर। ये कदम उठा सके, अली अकबर ने घोड़े को वापस मोड़ा, बाबा की खिदमत है, बाबा आपने तो मुझे रुख्सत कर दिया, काहे को मेरे पीछे आते हैं। एक दफा हुसैन ने सर सर बैठ तक अकबर को देखा, कहा बेटा तेरा भी कोई घड़ियाल जमा होता। और तुझसे मौत की इजाज़त ले तो मैं मुझसे पूछता हूँ बाप के लिए जमा बेटे को रुख्सत करना कितना मुश्किल है। अजरकुम अल्लाह, बस अदादारो बेटा गया 120 लाइन को फिनार किया, दोबारा बाबा की खिदमत में आया, बाबा काश पानी की जमीन हो जाए, असले की गिरानी ने मुझे थका दिया। क्या वाकई अली अकबर शर्मिंदा करना चाहते हैं इमाम हुसैन को? क्या नहीं पता पानी नहीं है? क्या नहीं पता बाबा सुबह से प्यासा है? नहीं, शर्मिंदा करना नहीं चाहते, बताना चाहते हैं बाबा अली अकबर में ताकत बहुत है, पानी का एक कतरा मिल जाए बता दूं सफीन और जमल क्या होती है। अल्लाह अकबर, इमाम ने अपनी अंगुष्ठर मुंगे मुंह में रखे और कहा बेटा बहुत जल्द नाना रसूलुल्लाह तुम्हें सहराब करेंगे। अदारो अली अकबर का जख्म बहुत अजीब है। अल्लामा बहरुल उलूम में ख्वाब में देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि मौला सामने खड़े हैं, जख्मों से खून बह रहा है, पूरा जख्म पूरा बदन जख्मी है, लहूलहान है। एक दफा अल्लामा बहरुल उलूम ने पूछा मौला ये जो जख्म है इनको कोई मरहम है, कोई दवा है? इमाम ने कहा जब मोमिन मुझ में रोता है मेरे जख्म भर जाते हैं। इमाम ने क्या कहा? अना कतीलुल अहबारा, मुझे रुला रुला के कत्ल किया, कभी अली अकबर लेके रुलाया, कभी कासिम छीना, कभी शिशमाहे को मेरे हाथ में दबा। मोमिन जब मुझे याद करेगा आंखों में आंसू होंगे, बुका होगा, गिरिया होगा। अल्लाह अकबर। कहा मौला ने कहा जब कोई मोमिन रोता है मेरे जख्म भर जाते हैं, लेकिन इमाम के सीने पे एक जख्म है, एक पुष्प जख्म है। अल्लामा बहरुल उलूम ने पूछा मौला ये पुष्प जख्म कैसा, इसकी भी कोई दवा है? सीने के हम की भी कोई दवा है? कहा के नहीं, इनकी कोई दवा मरम नहीं है। अरे पुष्प का जख्म जो है अब्बास का जख्म है और सीने का जख्म अली अकबर का जख्म है। अल्लाह अकबर। यही वजह है बेटे को पता है बूढ़े बाप से मदद तलब करना बाए से नंग हुआ करता है जवान के लिए। बनी हाशिम का चा जमी पे गिरा, अस्सलामु अलैका या बचा, मदद के लिए नहीं पुकारा, कहा बाबा अली अकबर के सलाम ले लो, हादा जद्दी रसूलल्लाह, ये रसूलल्लाह आ गए सैराब करने के लिए। और कह रहे बाबा आपको पैगाम दिया हुसैन से वो जल्द आ जाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अजीजाने गिरामी, जब भी कोई गिरता था शहीद होता था कोई न कोई असाबा थे, हुसैन की हालत गैर थी। एक दफा ज़ैनब उलिया खेमे से निकली, काले बुरके में पहुंची, अपने आप को लाश अकबर पे गिरा लिया। वाबजात वकबत अलैह है ताकि हुसैन के दिल को ढारस दे सके, वइला ज़ैनब ना होती तो हुसैन मर गए होते। एक शायर कहता है कि शिविर ने सिर्फ हुसैन के तन से सर जुदा किया था, वइला हुसैन तो अकबर के जनाजे में मर गए थे। बस अजादारो हुसैन ने देखा बहन आई है, एक दफा मुतवज्जे हुए, कहा बहन ज़ैनब लौट जाओ, अभी करबला नहीं पूरी हुई, अबे शाम गरीबा।